हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। इस राज्य में किसी एमपी के स्तर तक पहचान हासिल करने की तैयारी थी, क्योंकि अब लोग उसे एक नई नज़रों से देखने लगे थे और उसे सपोर्ट कर रहे थे। इस आधार पर तो उसकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। वहीं दूसरी ओर उसके सामने ईशान मौजूद था और उसकी ओर देखकर बोला, मिसेस खुराना का फ़ोन आया था, हमें अगले महीने ही आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी करनी है। वैसे भी आकांक्षा तो सिद्धार्थ से जल्दी शादी करना चाहती है, तो अगले महीने की 4 तारीख को ही हम दोनों की शादी कर देंगे, ज़्यादा वक्त नहीं है। तो अब हमें वैभव को फ़ोन करके यहाँ बुला लेना चाहिए, सारी शादी की जिम्मेदारी उसके ऊपर डालनी चाहिए। वैसे भी अब वो मैच्योर हो गया है, तो सारी जिम्मेदारियाँ उसे संभालनी चाहिए। ईशान की बात सुनकर नैना ने बड़े ही अकड़ के साथ जवाब दिया, आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, शादी खुराना मेंशन में होगी। ये मेंशन राजा महाराजाओं की हवेली जैसा ही है, तो हमें उसमें शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रिसेप्शन हम बड़े लेवल पर करेंगे, जिसमें दुनिया भर के VIP लोग और सभी नेता मौजूद होंगे। ये सुनकर ईशान काफ़ी खुश हो गया। उसने सोचा कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नैना की वजह से संभव हुआ है। नैना की आंखों के सामने उसका चेहरा याद आ गया, लेकिन उसने अपनी नज़रों में फिर से आत्मविश्वास भर लिया। इसका मतलब साफ था, उनके लिए पूरे रास्ते अब साफ थे। अब उनसे बदला लेने वाला कोई नहीं था, और उनकी नज़रों में ऐसा ही था कि जो उनकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सके, वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकेंगे। वहीं दूसरी ओर शादी की डेट फिक्स होते ही रणविजय ने आकांक्षा को मैसेज कर दिया। ये सुनकर आकांक्षा खुशी से तुरंत उठी और सिद्धार्थ की गोद में बैठ गई। उसने अपने गोरे हाथों से उसका गला लपेटते हुए कहा, सिद्धार्थ, हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। ऑलरेडी ये मंथ भी ज़्यादा गुजर चुका है, तो अगले महीने हमारी शादी हो जाएगी। तुम जानती हो, पूरी दुनिया में यही खबर फैल चुकी है, हर जगह न्यूज़ लीक हो चुकी है और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। सच में यार, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें झलक को भुलाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं इतना प्यार करूँगी कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। ये सुनकर सिद्धार्थ ने आकांक्षा को कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा वो गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। इस वक्त आकांक्षा ये बात बताने के लिए सीधा उसकी गोद में बैठी थी। धीरे धीरे सिद्धार्थ के होंठ झुकते हुए उसे चूमने लगे। सिद्धार्थ को एक बार फिर झलक की याद आने लगी, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसे किस करने लगा। आकांक्षा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ उसके इतने करीब आया था, लेकिन अभी वो दोनों किस करने में व्यस्त थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। रोनित वहां कुछ जानकारी देने के लिए आया था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, आकांक्षा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिलहाल उसने सभ्य तरीके से कहा, आई थिंक हमें यहाँ काम करना चाहिए, और हाँ, हम एक साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। मैं आपको आज शाम को डिटेल्स और जगह की जानकारी भेज दूंगी। आकांक्षा के लिए ये सरप्राइज था। उसने पहले से ही रिश्ते को मजबूत करने की तैयारी कर ली थी। सिद्धार्थ उसकी बातों का मतलब समझ रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर झलक अनामिका जल्दी घर पहुंच चुकी थी। तब अनामिका ने सबसे पहले दादाजी को सारी बातें बताना शुरू किया कि उन्होंने आज कितनी मस्ती की थी। अनामिका महसूस कर रही थी कि उसका पेट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। एक तो उसने थोड़ा फास्ट फूड ज़्यादा खा लिया था, ऊपर से हलवा खाने पर और भी खराब हो गया था। उसे तुरंत उल्टी जैसा फील होने लगा और वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई। दादाजी ने शॉपिंग बैग्स देखे और झलक को देखकर बोले, ज़रूर इस लड़की ने बाहर का कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, पर चलो अच्छा हुआ जो आप लोग शॉपिंग करने गए। ये सुनकर झलक चौंक गई और बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दादाजी? तब दादाजी बोले, बेटा तुम लोगों ने अच्छा किया। वैसे भी बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कल तुम्हें मेरे साथ मल्होत्रा इंडस्ट्री चलना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोगों से मिलो, इसके बाद अपना बिजनेस ज्वाइन करो। ये सुनकर झलक ने केवल गहरी सांस ली। दादाजी को हाँ कहते हुए वो अपने कमरे में आ गई। दादाजी मन ही मन बोले, मैं जानता हूँ कि अगर इस बिजनेस को कोई संभाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ झलक ही है, क्योंकि झलक में वही बिंदास स्वभाव है, वही शख्सियत है जो इस बिजनेस को संभालने के लिए चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की खुशी महसूस हो रही थी कि अब झलक पूरी तरह से तैयार थी। वो दमदार और फिजिकली स्ट्रांग काफी ज्यादा हो चुकी थी, ये बात उनसे छुपी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अनामिका अभी थोड़ी मौज मस्ती करना चाहती है, इसलिए उसे रोकना ठीक नहीं है। पर झलक CEO बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी और उसके लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। वहीं दूसरी ओर अपने कमरे में झलक मायूसी से बड़े आसमान में निकले हुए चांद को देख रही थी। उसके दिल की हालत भी काफी अजीब हो रही थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसे अपनी नई जिंदगी में कदम रखना ही होगा। फिर उसने सोचा कि अनामिका की तबीयत भी देखनी चाहिए। ये सोचकर वो सीधे अनामिका के कमरे में चले गए। थोड़ा फ्रेश होने के बाद अनामिका खुद को काफी बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन उसको कुछ कमजोरी अभी भी महसूस हो रही थी। वो आराम कर रही थी। झलक को देखकर वो उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में वही लॉकेट था जिसे वो हमेशा अपने सीने से लगाए रखती थी। तभी झलक ने लॉकेट को देखकर कहा, आखिर ये लॉकेट यहाँ क्या कर रहा है? तुम तो इसे मुझे दे चुकी हो ना, ये मेरे पास भी था। अनामिका एक्साइटेड होकर बोली, तुम्हारे पास था नहीं है, तुम जानती हो मैंने तुम्हें ये अपनी जान से भी ज्यादा कीमती चीज दी थी, लेकिन अब तो तुम यहाँ हो तो क्या तुम मुझे ये वापस दे सकती हो? झलक ने कहा, लेकिन तुमने तो ये मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था। अनामिका बोली, हाँ जानती हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इसे तुम हमेशा अपने गले में पहनकर रखो। दोनों बहनें लॉकेट पहनेंगी तो कितना अच्छा लगेगा। तुम जानती हो मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाई थी कि लॉकेट के अंदर क्या है, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ। ये कहकर अनामिका ने लॉकेट झलक के सामने खोल दिया। उसमें कुछ और नहीं बल्कि उसके पिता आरव मल्होत्रा की फोटो थी। झलक को देखकर समझ आया, इसका मतलब तुम्हारे पिता की फोटो इसमें है। पापा की फोटो वाला लॉकेट तुमने मुझे दे दिया था, तुमने ऐसा क्यों किया जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तब तक पापा तुम्हें नहीं मिलते थे। अनामिका ने कहा, देखो तुमने भगवान की लीला को समझो, ये लॉकेट किसी और को नहीं बल्कि अपनी बहन को दिया। सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि ये लॉकेट तुम्हारे पास है और किसी के नहीं। ये सुनकर झलक के दिमाग में जैसे बिजली गिर गई थी। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, फिर बोली, लेकिन ये मेरे पास नहीं है, शायद ये लॉकेट खुराना मेंशन में रह गया है। तभी अनामिका ने पूछा, लेकिन क्यों, ये तो तुम्हारे साथ ही था, तुम्हारे सामान के साथ। झलक बोली, मैंने इसे ड्रेसिंग के पास वाली डोर में रखा था, शायद तुम भूल गई, खुराना परिवार ने मेरा सामान अस्पताल में भिजवा दिया था, लेकिन सामान में लॉकेट नहीं था। ये सुनकर अनामिका की आंखें भर गई। अनामिका बोली, तुम जानती हो ये बहुत रेयर लॉकेट है, इसमें एक फोटो पापा की है और दूसरी में मेरी माँ की। मुझे पता है कि माँ ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं तो उसकी बेटी हूँ, इसलिए इसे तुम्हें दे दिया, ये लॉकेट का हिस्सा तुम्हारे लिए है। झलक को ये सुनकर काफी बुरा लगा। वो तुरंत बोली, अनामिका तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, मैं खुराना मेंशन जाकर लॉकेट वापस लेकर आऊंगी।
ये सुनकर अनामिका बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम खुराना मेंशन में सिद्धार्थ खुराना का सामना करोगी? अभी तुम इतने मजबूत नहीं हो कि उनका सामना कर सको। तुम जानती हो ना कि तुम कितनी मुश्किलों से गुजरी हो और अब थोड़ी ही ठीक हुई हो, तब भी इन सब सिचुएशंस में तुम उनके सामने कैसे जाओगी? झलक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी दादाजी, मुझे कल इंडस्ट्रीज लेकर चल रहे हैं, मैं वहां जाकर देख लूंगी कि क्या सीन है। ये सुनकर अनामिका ने केवल गहली सांस ली।